शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हर बार हमारी कोशिश रहती है कि कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी बात लेकर आए जो कहीं न कहीं हमारे जीवन को अभी भी परेशानी में डाल रही है। बहुत सी बातें आती हैं हमारे दिल में। हम देखते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, एक ही परिवार में रहते हुए मुझे लगता है कि मैंने भी वही पढ़ाई की, मेरे भाई ने भी वही पढ़ाई की, लेकिन मैं कहीं और निकलता गया और वो कहीं और चला गया। हमने एक जैसी हमारी परवरिश हुई लेकिन उसका कुछ और भाग्य लिखा था, ये हम कह देते हैं, और मेरा कहीं और भाग्य लिखा था। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों, क्या सक्सेस जो मुझे मिलती है या मेरे जीवन में एक तरह की पालना होने के बावजूद अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग उनका जीवन क्यों होता जाता है? ऐसी कई सारी बातें आपके और हमारे मन में है। कर्मा फिलॉसफी, भारतीय अध्यात्म की अगर हम नींव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जैसे आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। ये बात हम कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम देखें तो क्या उससे फर्क पड़ता है और कैसे हम समझ सकते हैं कि पूरा लॉ वर्क कैसे करता है। बात करने के लिए हमारा सौभाग्य खास जर्मनी से हमारे साथ बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर सुदेश बहन है, जो कि ब्रह्मा कुमारी के यूरोपियन डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुदेश दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग दीदी। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी बात की कि एक ही घर है, बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि भाई एक ही घर में है हम, मैं भी, मेरी भी पालना वैसे ही कर रहे हैं पिताजी माताजी और मेरे भाई की भी वैसे ही कर रहे हैं, मेरा जीवन कहीं और निकला, उसका जीवन कहीं और निकला। अगर मेरा अच्छा निकल गया तब तो मैं इस बारे में सोचूंगा नहीं, लेकिन जब मेरा बुरा निकला तब मुझे लगने लगता है कि उसको क्यों अच्छा हो गया। ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ, या हम जब पढ़ाई कर रहे थे, हम एक तरह से ही पढ़ रहे थे सब कुछ, और इनफैक्ट मैं कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी सपोज कुछ बात करें, तब भी मेरे को जो मिला जीवन में वो जो उस व्यक्ति को मिला उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और यहाँ अच्छा, और जब हमें अच्छा मिल रहा होता है तब नहीं हम सोच पाते ज्यादा कि क्यों हुआ, लेकिन जब नहीं मिला जो मुझे लगता है मैं डिजर्व करता था तो तब सोच शुरू होती है कि क्या है, भाग्य क्या है, किस्मत क्या है, और ये जीवन में ऐसा क्यों होता है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली हम सब एक ही परिवार के व्यक्ति इस कर्म क्षेत्र पर एक प्रकार का पार्ट प्ले कर रहे हैं, और परिवार में, जिस परिवार में हम आए हैं उस परिवार का हमारे साथ जरूर कुछ संबंध है, तब हम वहां पर हैं। इस प्रकार से ड्रामा में अगर स्टेज पर पार्ट प्ले करने वाले एक्टर्स हैं तो उनका स्टोरी से कुछ कनेक्शन है, परंतु हर एक एक्टर का पार्ट अलग अलग है। दूसरे शब्दों में कहेंगे हर एक आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं। अभी आप देखिए एक ही घर में ट्विन्स पैदा हुए हैं, अब ट्विन्स की तो शक्ल भी एक जैसी है लगभग, परंतु विचार मिलते भी हैं और या फिर भी अलग अलग हैं। व्यवहार हर एक का अलग अलग है, इसका आधार है उनका संस्कार। संस्कार आत्मा की चैतन्य शक्ति का एक पोटेंशियल, एक हिस्सा कहेंगे, क्योंकि अलग चीज नहीं है परंतु संस्कार अनुसार वो व्यवहार में आते हैं। फिर उनकी उस आत्मा की स्वेच्छा, हर एक आत्मा की अपने संस्कार अनुसार, संस्कार प्रेरणा करता है कि मुझे ये कार्य करना है। अपॉर्चुनिटी सबको एक जैसी है, धरती एक जैसी है, परंतु अगर बीज की क्वालिटी, जैसे आप देखेंगे हम सब कहेंगे भाई हमने सबने आम लगाए, आम का मौसम है अभी तो आम लगाए, तो आम में भी है तो आम, पर आम में भी क्वालिटी अलग है, कोई कोई किस तरह का है। केला है तो केला ही कहेंगे ना, है तो केला ही। माली भी एक है, पानी भी एक है, धरती भी एक है, फिर भी क्योंकि क्वालिटी सीड में अलग अलग है, देखने में शब्द एक है, नाम एक ही है। इसी प्रकार से हम सब एक ही परिवार में हैं, पर एक परिवार में इंडिविजुअल आत्मा का संस्कार अलग अलग है, उस संस्कार अनुसार ही उनका स्वभाव व्यवहार चलता है। उसमें उसका नेचर, जिसको दूसरे शब्दों में जब हम कहते हैं नेचर, तो नेचर में वो उसकी अपनी प्रकृति प्रभाव डालती है।
दीदी यहाँ फिर मैं एक बात ये जानना चाहती हूँ, कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, ज्ञान को अगर मैं एक तरफ भी कर दूं, जो जितने लोग जो नए जुड़ रहे हैं उनसे कहते हैं, हाँ। बहुत निर्मल एक कच्चे घड़े की तरह होता है, एक मिट्टी की तरह होता है, कच्ची मिट्टी की तरह होता है, और उसको हम जैसे करना चाहें वो वैसे हम उसको तैयार कर सकते हैं। ज्यादातर ये कहा जाता है कि जो बच्चा एक है, लेकिन अगर हम इस बात को समझते हैं तो हम ये कहते हैं कि मतलब जो मुझे समझ में आ रही है बात, कि वो जो कच्ची मिट्टी है उसके अंदर भी वो घड़ा कैसा बनेगा ये निमित्त है, ये तय है। क्या ये ऐसा है?
अभी आप देखिए, मिट्टी तो है, मिट्टी को शेप देने वाली बात हुई ना, तो इसी प्रकार से जो निर्माण है भाग्य का उसमें या संस्कारों का, उसमें चार चैप्टर्स हैं। पहला है परिवार, परिवार से बच्चा सीखता है, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली उसके पर इस पर इम्प्रेशन पड़ते हैं। दूसरा फिर है उसकी एजुकेशन, तो जिस तरह की उसने एजुकेशन ली, उसने अपनी बुद्धि को यूज करना शुरू किया, उसके पास निर्णय राइट और रॉन्ग निर्णय करने की शक्ति है, चूज करने की शक्ति है, तो जो उसको इम्प्रेस करता है वो उसको स्वीकार करता है, अच्छा लगता है वो अंदर अपनी इच्छा अनुसार फिर उसको यूज करना शुरू करता है, तो फिर वो करते करते एक्शन रिपीट हुआ तो हैबिट बन गई, हैबिट रिपीट की तो नेचर बन गई, नेचर रिपीट किया तो संस्कार बन गया, संस्कार एक्सप्रेस हुआ तो पर्सनालिटी बन गई। तीसरा है उसकी कंपनी, किस तरह की कंपनी में बच्चा है। अभी वो जैसे शेप घड़े की बन रही है, उसी अनुसार वो कंपनी का कलर पकड़ा उसने, तो जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए आज समाज में बच्चे, माँ बाप को बड़ा ध्यान रहता है कि बच्चों को ऐसी कंपनी मिले जिसमें कि वो सेफ रहे, ऐसा हम स्कूल पढ़ावें, उनको ऐसी एजुकेशन दें जिसमें कि वह अच्छी तरह से अपनी उसको जीवन को डेवलप कर सके, अपनी लाइफ का कैरियर बनाएंगे फ्यूचर में, इसी भावना से पेरेंट्स अच्छे स्कूल में भेजते हैं। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आत्मा की अपनी कैपेसिटी, अपनी पर्सनैलिटी, ओरिजिनली जो आत्मा लेकर के आई है,
वही जैसे बीज में क्या प्रोग्रामिंग है,
क्या प्रोग्रामिंग?
कि कई बार क्या होता है कि बीज पनपते ही नहीं, कहते हैं फिर कि बीज ही खराब थे, तो समवेयर वो बीज जो था उसकी प्रोग्रामिंग ही खराब थी,
तो प्रोग्राम इफेक्ट हुआ, कहाँ पर डिफेक्ट आ गया उसमें। जैसे भुना हुआ बीज है, तो भुने हुए बीज को कितना भी उगाने की कोशिश करेंगे उगेगा नहीं, कितना भी उसको एनवायरमेंट अच्छा दे रहे, कितना भी उसको न्यू प्रकार की एनर्जी दे रहे, पर
नहीं होगा,
नहीं होगा। इसी प्रकार से एनकरेजमेंट भी देते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रेज भी करते हैं, उसकी आत्मा को दूसरी प्रकार से शक्ति देने की कोशिश करते हैं, कोई रिलीजियस रीति से या कोई एजुकेशन की तरीके से, परंतु वो नहीं पनपता है क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार अपना बहुत कड़ा है, स्ट्रांग संस्कार है। परंतु पुरुषार्थ फिर भी किया जा सकता है, जैसे साइंस की शक्ति से हम कड़ी से कड़ी चीज को भी सॉफ्ट कर सकते हैं, तो ऐसे जब आत्मा अपने आप को समझ लेती है कि मेरा संस्कार है, संस्कार होते हुए भी न्यू इच्छा उत्पन्न होती है ना कि मैं कुछ करूं, कुछ सीखूं, तो फिर उसकी वो आत्मिक बल से परमात्म संबंध से परिवर्तन आता है, धीरे धीरे आता है परिवर्तन, परंतु परिवर्तन आ सकता है।
तो संभव है बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि जब हम जो जो आत्मा जो जन्म हुआ, क्योंकि आज हम जन्म से ही बात करना शुरू करते हैं कि जब जन्म हुआ तो कुछ चीजें वो लेकर आ रहा है, एक प्रोग्रामिंग वो लेकर आ रहा है, और कुछ हमने जो एनवायरमेंट दिया उसके ही उन संस्कारों को, अच्छे जो संस्कार थे उनको हमने पनपने दिया, उसकी जगह दी, और कुछ ऐसे नए संस्कार भी हम देते जाते हैं।
जन्म से पहले पेरेंट्स का एटमॉस्फेयर बहुत पड़ता है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि बच्चा जन्म ले, जैसे ही माता एक्सपेक्ट कर रही है बेबी को, तो उन्होंने एक ऐसी प्रेरणा देते थे कि आप थोड़ी धार्मिक बातें रखो, परमात्मा का ध्यान करो, सवेरे उठ करके भगवान की का कीर्तन करो, याद करो, जो भी जिसकी श्रद्धा भावना है, तो उस प्रकार की स्मृति से बच्चे के पास वही वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं माँ के। खान पान माँ कैसा खा रही है, उसकी कंपनी कैसी है, अभी उसी हिसाब से आप देखेंगे बच्चे। माँ वही है, दाई अंदर वही है, मतलब उसकी फॉर्मेशन वही है, पर हर एक के फीचर्स अलग अलग है, कैरेक्टर अलग अलग है, क्योंकि वो माँ का खान पान, माता की उस समय की वृत्ति, उस तरह का व्यवहार, उस तरह का रिएक्शन अपने परिवार में, सिचुएशंस का इफेक्ट बच्चे पर सूक्ष्म में पड़ रहा है, पेरेंट्स का आपस का कनेक्शन रिएक्शन किस प्रकार का है, वो टेंशन बच्चा ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए बच्चे अपना संस्कार तो लेके ही आया है, पर पेरेंट्स का संस्कार जन्म से पहले कुछ प्रभाव लेकर के आया है। तो इसलिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, ऐसा नहीं कि बच्चा खराब है, परंतु बच्चे को हमने शुरू से जन्म से पहले हमारी संस्कार संस्कृति क्या है, हमारी पेरेंट्स की वृत्ति किस प्रकार की है, तो हमारी मनोवृत्ति से बच्चे की मनोवृत्ति का कनेक्शन होता है।
तो यहाँ से वही वो जो एटमॉस्फेयर है वो आते ही जो बच्चे का गर्भ में आते ही जो है वो पूरा संस्कार का जो एक परिवर्तन है वो शुरू हो सकता है। तो कैसा हम एनवायरमेंट देते हैं, यदि यहाँ जो कार्मिक फिलॉसफी की बात करते हैं, जो कर्म की कर्मा थ्योरी जो है, जिसको भारतीय कहा जाता है कि नींव है अध्यात्म की, उसमें बहुत सी बार ये कहा जाता है कि जैसे कर्म वैसे आपको फल मिलेगा। मैं तो कर्म अच्छा कर रहा हूँ, कहते कि बच्चा तो अभी तो आया ही है, अभी क्या कर्म कर दिया उसने कि उसके आते ही सपोज किसी की डेथ हो जाए, कोई शरीर छोड़ देता है आपके, या कुछ अच्छा हो जाता है एकदम से कि बड़ा भाग्य वाले बच्चा है, या कुछ खराब हो जाता है तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बच्चा है जो आया है, तो अभी तो आया ही है, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके आने से कुछ ऐसा हो सकता है?
नहीं, ऐसी बात वास्तव में, ये तो हम अपने अंदर मनोवृत्ति और एटीट्यूड को दृष्टिकोण ऐसा बना लिया है। बच्चे का कनेक्शन उस जिस आत्मा को जाना था वो भी तो अपनी लिखित लिखा करके आया था। अगर समझो बच्चा आया और दूसरी कोई आत्मा घर से गई, तो उस आत्मा का जहां जाना था वो भी तो पहले से लिखा हुआ था। ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने आते ही कुछ अपना प्रभाव डाला। तो जहां उस जिस आत्मा को जन्म लेना है, चार महीना पहले वहां वूम में मदर के पास वूम तो तैयार है, उसका घर तो पहले से तैयार है, और फिर जाने के लिए बच्चा गया, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बच्चे ने आकर के प्रभाव डाला। हाँ, पेरेंट्स का ये अंदर शक कि शायद बच्चा अथवा ये आत्मा इस प्रकार से आई है जो हमारे घर में धन की कमी पड़ गई है, या हमारे धन में घर हमारा परिवार से कोई चला गया है, या कोई बीमार पड़ गया है। वाइब्रेशंस हो सकते हैं, थोड़ा असर डालते हैं, पर इंडिविजुअल कर्म सिर्फ उस आत्मा का कर्म दूसरे पर इतना प्रभाव डाले वो नहीं, अपने कर्म फिलॉसफी का भी तो कनेक्शन है। जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा उसका अपनी प्रकृति के साथ कितना संबंध था। ये शरीर जो है ये प्रकृति की देन है। अब हमारा हमारे शरीर के साथ कितना संबंध है, इस मकान शरीर रूपी मकान में अथवा इस गाड़ी में मुझे कितने समय गाड़ी को चलाना है, वो भी तो उसका अपना हिसाब किताब पहले से ही था ना। लेके आया, जाने आने की तिथि लेकर के आया, तो जाने की तिथि भी तो लेकर के आया हुआ था। फिर जिन पेरेंट्स के साथ उनका हिसाब किताब था, जितना लेना था जितना देना था उतना दिया, जिस संबंध के साथ जितना ड्रामा में उस सीन में पार्ट प्ले करना था उतना ही उस सीन में पार्ट प्ले करना था। नई आत्मा के साथ उसका हिसाब किताब नहीं था, तो उस आत्मा ने तो कुछ उससे लेना नहीं है और ना उस आत्मा को कुछ देना है, तो वो सीन उस जिस आत्मा जो चली गई शरीर छोड़ के उसका उस सीन से पार्ट पूरा हुआ। हम ऐसे ही उसको दोष देवे नए बच्चे को कि उस आत्मा ने इस प्रकार से आकर के अथवा उस बच्चे ने आकर के दुख दिया, तो आप देखिए कितना हम डैमेज करते हैं बच्चे की मनोदिशा को, हम साइकोलॉजी को कितना डैमेज कर रहे हैं। वो बच्चा बचपन से ही अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करेगा, वो समझेगा कि मेरे को यहाँ कोई चाहता नहीं है, मैंने शायद यहाँ दुर्भाग्य चला लगाया है, मैं आया मेरा बाप चला गया, मैं भी शायद इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरी मदर को मैंने तकलीफ दी। कुछ कनेक्शन ही नहीं है, है आत्माओं का आपस में प्रीवियस कार्मिक अकाउंट प्रकृति के साथ अथवा संबंध के साथ। तो बच्चे को उस पेरेंट से कुछ लेना नहीं है, बाप को उसको कुछ देना नहीं है, तो जरूर है, जहाँ उसका दूसरा पार्ट प्ले करने का है उस आत्मा वो गई।
तो वो ये जो चक्र है इसमें उसका डिपेंड नहीं करता, लेकिन बात सवाल कई बार लोगों के मन में आता है तो फिर मैं गरीब घर में क्यों पैदा हूँ, मेरे को क्यों नहीं, मुझे क्यों सिल्वर स्पून के साथ जन्म नहीं मिला, यू नो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कहा जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों। जब सपोज कई कई बच्चे जो हैं वो शरीफ से या कहीं से तो या मानसिक रूप से अगर रोगी बच्चा हो जाता है तो माँ बाप की जिंदगी पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और पूरा टाइम उनके साथ ये चलता रहता है कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया, मैं इस जन्म में तो बहुत अच्छा करती थी, मतलब मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं करा, तो फिर मुझे ऐसा क्यों पनिशमेंट मिल रही है।
अच्छा, अभी आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मानसिक स्थिति में रिटार्डेड है, बच्चे को तो बड़ा आनंद है, कुछ किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स को सफरिंग है, तो हिसाब किताब पेरेंट्स का उस बच्चे के साथ इस जन्म का देने का है। जरूर पिछले जन्म में इस प्रकार से कोई ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक है इंस्टेंट कर्म, एक है शॉर्ट कर्म, एक है लॉन्ग टर्म कर्म। तो हम जीवन भर में जिन भी आत्माओं से, जिन भी मनुष्य आत्माओं से, व्यक्तियों से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, क्या हमारा ये अटेंशन रहता है कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनको दुखाए नहीं, हमारा स्वार्थवश ऐसा व्यवहार ना करें जो उनका मन भी दुखी हो, तन भी दुखी हो, धन को भी हम मिसयूज कर करके उनको दुखी दे रहे, अपने अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कितने हम पोजेसिव होते हैं। अच्छा, विशाल के तौर पर व्यवहार में किसी ने ऐसा व्यवहार किया जिसमें किसको धोखा दिया है, उनके साथ बहुत दुष्टता रखी है, अब वो किस प्रकार से पे करे, पे तो करना ही है, जो दिया है, जो मिस यूज किया है किसी भी प्रकार से, चाहे कामवश, चाहे क्रोधवश, चाहे लोभवश, चाहे मोहवश, अहंकारवश, ईर्ष्यावश, नेगेटिव फोर्सेस से, वो अकाउंट इकट्ठा होता चला जा रहा है। अभी समझो मानो किसी ने किसको धोखा दिया धन में, वो अकाउंट तो बन गया। अच्छा, अभी पार्टनरशिप में हमने धोखा दिया, अब उस आत्मा को अपना हिस्सा लेना तो जरूर है, वो आया है लेने के लिए। अगर वो पिछला याद रहे कि मैं पार्टनर था, इसको मैंने धोखा दिया, इसने मुझे ऐसा किया, तो उसकी भावना में वो और ही नफरत पैदा हो जाएगी या भय पैदा हो जाएगा। अभी बच्चा बन करके अगर आया है तो मुझे टाइम भी देना है, एनर्जी भी देनी है, संपत्ति भी व्यस्त, और बच्चे को तो कुछ, वो तो इतना डिटार्डेड बच्चा आनंद मौज में है, उसको यही नहीं मालूम है कि मुझे कोई दुख है। तो पेरेंट्स का हिसाब किताब हुआ ना उस आत्मा के साथ, उसका हिसाब किताब नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम धन का हमने मिस यूज किया, प्रकृति को, तो यानी संपत्ति को, तो संपत्ति भी एक एनर्जी है जिसका हिसाब किताब हमारे जीवन के साथ, सिर्फ व्यक्तियों का हिसाब हमारा हिसाब किताब नहीं है, प्रकृति के साथ भी हिसाब किताब है, और ये संपत्ति प्रकृति की शक्ति है। धन धन डायरेक्ट नहीं आता, धन वस्तुओं से आता है, धन जो भी चीजें हैं, हम चाहे पानी से संबंधित व्यापार करें, या हम वायु संबंधित व्यापार करें, या हम धरती संबंधित व्यापार करें, साधन तो प्रकृति है, और ये हमारा शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है। पांच तत्व का बना हुआ शरीर है, जिसको कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पांच तत्व का बना शरीर है। तो हमने पांच तत्व को अगर मिस यूज किया है तो हमारा उसका थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होते, धीरे 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 वो इस प्रकार से अकाउंट इकट्ठा हो जाता है जो हमको ये नहीं पता चलता कि हमने अकाउंट इकट्ठा किया। मिसाल के तौर पर हमको दृष्टि है, कितनी मूल्य चीज, मूल्यवान चीज है आंखों की दृष्टि, नेत्रों की दृष्टि, नेत्र हमारे, नेत्र नहीं तो जहान नहीं। अब इन नेत्रों को यूज करने वाली मैं आत्मा हूं, मैं आंखों से सदा दोष दृष्टि देखती हूँ, हमेशा दूसरे को क्रिटिसाइज करती हूँ, हमेशा दूसरे को नफरत से देखती हूँ, हमेशा दूसरे को गिल्टी महसूस कराने की कोशिश करती हूँ, या उसको व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति है, दूसरों के प्रति भी उनकी दृष्टि ऐसी बनाती हूँ। तो मेरी दृष्टि जो दिव्यता मेरी दृष्टि में रहनी चाहिए, धीरे धीरे ये ही मेरे नेत्र
कमजोर होते जाएंगे,
आत्मिक शक्ति कम होती चली जाएगी। और मैंने और ही ज्यादा मिस यूज किया तो प्रकृति अपना प्रोटेक्शन करती है। मिस यूज किया मैंने ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, यानी ये हमारे अंग अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं अगर हमने टू मच मिस यूज किया तो। ये एक प्रकार की सूक्ष्म प्रिजन हो जाती है, ऑटोमेटिक, इसमें कोई बैठ करके चला नहीं रहा, ये प्रकृति का ऑटोमेटिक सिस्टम है। अभी जैसे इंसान में, यहाँ पर हम जो इंसान कर्म करते हैं तो कंट्रोल करने के लिए भाई पुलिस है, कंट्रोल करने के लिए जेल है। और वास्तव में जेल में भेजने की कोई दुश्मनी की बात नहीं है, जेल में जज ने इसलिए उसको ये डिसाइड किया, जज का कोई रिश्तेदार तो नहीं लगता है, परंतु क्यों डिसाइड किया कि उसको 10 महीना या 5 महीना या 6 महीना जैसा कर्म है उस हिसाब से वो उसकी जो बार बार प्रतिक्रिया बार बार एक्शन में वो आ रहा है,
वृत्ति बन रही है,
वो वृत्ति बन रही है उसको थोड़ा ब्रेक देने के लिए, क्योंकि बार बार वो करते रहेंगे तो संस्कार स्ट्रांग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ जेल में भेजते इसलिए है ताकि वो स्टॉप हो जावे एक्शन, परंतु कई ऐसे कर्म हमें हैं जो जेल से आने के बाद भी फिर दोबारा वही कर्म करेंगे। तो फिर प्रकृति अंत में प्रकृति अपना रिवेंज लेती है, यानी प्रकृति रिएक्ट करती है, अथवा ये कहे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। अपने प्रोटेक्शन के लिए समझो, मतलब कोई ना कोई जो ही अंग जो है ना वो एक्शन करना बंद कर देगा, सहयोग देना बंद कर देगा। तो कहने में तो आया कि मेरे इसकी क्यों, मुझे आंखें क्यों चली गई या कान क्यों बहरे हो गए। एक तो प्रकृति के हिसाब से, यानी प्रकृति की अपनी शक्ति है, एज बड़ी होती है धीरे धीरे वो यूज करते करते कमजोर हो जाते हैं। दूसरा है हमने मिस यूज किया है,
और वो किसी भी जन्म में हुआ,
किसी बहुत जन्म से इकट्ठा हुआ, एक जन्म की बात नहीं है, ये धीरे धीरे इतना सूक्ष्म है हम देखना भी बंद कर देते हैं कि हमने कोई भूल की है। जैसे मिसाल के तौर पर,
लेकिन हमने बॉडी, प्रकृति की दी हुई बॉडी तो हर जन्म में हमने छोड़ दी, ठीक है, वो तो हम वापस करते गए, तो फिर प्रकृति तब भी हमारे साथ रिएक्ट करेगी अगर मैंने किया सब कुछ पिछले जन्म में।
बेहद की प्रकृति तो है ना, हमने वो सेट जो यूज किया वो तो मिस यूज किया, परंतु वो प्रॉपर्टी तो नेचर की है ना,
सो लॉ ऑफ नेचर तो कंटिन्यू
है ना, वो हमने जो मेरे को सेट या सिस्टम मिला है बॉडी का वो तो अभी तो मैंने मिस यूज किया है, वो तो समाप्त हो जाएगा, प्रकृति में चला जाएगा, पर बेहद की प्रॉपर्टी में ये तो प्रकृति की अमानत है। पर हम चलते चलते इतना मिस यूज कर लेते हैं, जैसे दीवा जग रहा है ना, तो अभी उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल में थोड़ा दूसरा तेल मिल जावे, अच्छा अब जब मिक्स हो गई ना डस्ट उसमें, तो दीवा अंदर जग रहा है वो धीरे 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 सूट क्रिएट करता है काला,
सूट
क्रिएट, अच्छा धीरे 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 बिजली जो लैंप है, लैंप की चिमनी है वो धीरे धीरे काली होना शुरू होती है, ऊपर सूट इकट्ठा हो जाता है, ब्लैक स्टफ इकट्ठा हो जाता है। अब दीवा तो ये समझ रहा है कि मैं जग रहा हूँ, परंतु प्रकाश करना बंद कर देता, बाहर रोशनी नहीं आ रही है। तो ऐसे ही हम अंदर से तो समझते हैं मैं तो ठीक हूँ ना, ये तो मुझे ऐसा करना ही चाहिए ना, तो मैं अपनी इच्छाओं के वश, अपने लोभ के वश, अपने स्वार्थ के वश, अहंकार के वश, मैं उन अपने ही सेंस ऑर्गन्स को, यहाँ तक कि अपने मन को भी मिसयूज करता हूँ, बुद्धि को भी मिसयूज करता हूँ, फिर साथ साथ सेंस ऑर्गन्स को, सेंस एंड ऑर्गन्स का आपस में कनेक्शन है। तो इस प्रकार से यूज करते 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 वो यूजलेस हो जाता है, यानी उसकी शक्ति कम हो जाती है, तो फिर से शक्ति जब कम हो गई तो एक समय पर स्टॉप हो जाएगा ना, फिर उनको रियलाइजेशन आती है क्योंकि वो मिस यूज, जैसे जेल भोग ली ना, फिर वो फ्रीडम है। इस प्रकार से मनुष्य आत्माएं अपने आप ही प्रकृति के बंधन में बंधती है और प्रकृति के बंधन से छूटती है, तो जीवन बंधन वाला बन जाता है, तो कभी तन का रोग, कभी मन की अशांति, कभी धन की कमी, कभी संबंध की परेशानी, कभी प्रकृति का प्रकोप, कभी गवर्नमेंट से परेशानी।
बहुत सुंदर, तो यहाँ एक बहुत क्लियर रूप से, क्योंकि ये एक अभी तक ऐसा एस्पेक्ट था जिस पर हम बहुत चर्चा नहीं कर पाए थे, और एक बहुत कार्मिक फिलॉसफी को समझते हुए कि यहां अब ये बात बार बार हम कहते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं, इस जन्म की नहीं तो पिछले किसी जन्म। तो अब ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी की भी बात है, जो एक ये बहुत बड़े पेन में रहते हैं लोग जब वो डिसेबल्ड अगर जिंदगी जी रहे हैं, तो ये भी मुझे समझना पड़ेगा कि इस जन्म में नहीं लेकिन कहीं ना कहीं पिछले किसी जन्म में मैंने उस ऑर्गन को इतना इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से इस्तेमाल करती गई हूं कि वो प्रकृति ने ही अपना रोल प्ले करके खुद को प्रोटेक्ट।
तो इसीलिए प्रकृति ने स्वभाव, नेचर जो होती है ना हिंदी में, इंग्लिश में प्रकृति, जो पहले से बना हुआ है, क्या प्रकृति तो पहले से है, उसको मैं फिर से किस प्रकार से उसको यूज कर रही हूँ, मेरी भावना उसमें क्या है, स्वभाव क्या है, उस नेचर को मैंने किस नेचर से यूज किया है, इसीलिए भावना पोजेसिव होके यूज किया है या मैं एक डिटेच्ड होके यूज किया है, उसमें मैंने गुण यूज किया है या अवगुण यूज किया है। यूज करने के लिए तो है, आंखें देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, पर मैं गॉसिप का इंटरेस्ट ज्यादा ले रही हूँ, मुख बोलने के लिए है। नेचर ने इतने सुंदर तरीके से 32 ईंटों के पीछे जो ये किला बना के रखा है ना, उसमें 2.5 इंच की जबान रखी है, इतनी प्रोटेक्टिव रखी है। और हम जब हमारी नेचर थोड़ी ट्रफ है, ईर्ष्या द्वेष वाली है, क्रोध वाली है, तो जबान ऐसे जैसे तीर कमान की तरह काम करती है तो इतनी सॉफ्ट लचीली, कोई किसको पत्थर मारे तो वो चोट जो है वो थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएगी, पर मुख से जो कड़वा वचन बोला वो जख्म बहुत गहरा करता है। तो ये अकाउंट बना देता है, हमने गुण से गुण का व्यवहार किया, वहां अकाउंट नहीं बनेगा। समझो मानो, सिंपल बात है कि आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपसे मैंने हेलो किया, रस्ते में मिले, हम आपकी पहचान हो गई, हम रस्ते में मिलते हैं, कहते हेलो गुड मॉर्निंग, आपने मुस्कराया, मैं खुश हो गई, मुस्कराहट से मुस्कराहट मिली, आपका ध्यान कहीं और है, आपने मेरे पर ध्यान नहीं दिया, मैं सोचने लग जाती ये क्या इनको बड़ा अपना नशा चढ़ गया है, मेरे को पहचाना भी नहीं, मेरे को जवाब भी नहीं दिया, अब मैं वो जो है व्यर्थ संकल्प चला रही।
वेरी ट्रू,
मैं आपका ध्यान आपने इग्नोर किया ही नहीं, आप कहीं और ध्यान पर है, तो अभी मैंने वो जो आपका ध्यान कहीं और है, मैं अपने पर ध्यान खिंचवा करके अननेसेसरी वो अपना मन का जो बंधन है आपसे बांध रही हूँ, फिर उसके प्रति मैं कुछ बोलूंगी भी सही, अच्छा देखो चढ़ गया नशा, अहंकार है कुछ ना, अब ये फालतू व्यर्थ एक वीकनेस, मेरी वीकनेस आपसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सूक्ष्म रीति से हम एक दो के प्रति ऐसा सूक्ष्म कनेक्शन जोड़ लेते हैं, तो फिर हमने एनर्जी दी ना, अब मैंने दी तो जरूर है मैं आपसे वापस मांगना चाहती हूँ, तो इस प्रकार से हम ऐसा कनेक्शन
बहुत सुंदर दीदी। और जहाँ ये इनफैक्ट ये क्या करें हम, ये एक बहुत बड़ी बात रह जाती है, आज वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो क्लैरिटी के साथ ये बात आई है कि इनफैक्ट हर चीज हम जो देख रहे हैं, जो जैसा आपने बताया कि जो जो हमें ऑर्गन्स मिले हैं, जो प्रकृति के दिए हुए इतने सुंदर गिफ्ट्स हैं, उनका हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी नेचर उसके साथ कैसे, नेचर की नेचर क्या रखते हैं हम, वो बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि हमें क्या, ये हमारे असली कार्मिक अकाउंट्स हैं। तो आगे हम व्यवहार की बातें तो कर ही लेते हैं कि मैंने बोला कैसे, मैंने ये कैसे किया, मैंने उसके साथ व्यवहार कौन सा किया, लेकिन ये जो सूक्ष्म कहीं चीजें हैं जो चल रही हैं, जो ये काम
अपने साथ, इसको मैंने अपने साथ अकाउंट बनाया
है, व्यक्तियों के साथ, सिचुएशंस के साथ तो बाद में आएंगे बात। तो दीदी आज की इस पूरी बातचीत के लिए जो एक कहीं हमने बहुत डीप उस चीज को छुआ है, बस आगे आने वाली कड़ियों में उसको आगे करते रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
बिल्कुल, अभी तक हम ये सोचते ही नहीं थे, हम ये सोचते थे कर्म मतलब उस किसी भी व्यक्ति के साथ जो मैं व्यवहार में आया तो वो मैंने कर्म क्रिएट किया, कोई सिचुएशन हो गई तब मैंने कर्म किया, लेकिन अपने ही साथ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और अपना मतलब मैं और मेरे शरीर, मेरी प्रकृति, प्रकृति के दिए हुए इस गिफ्ट के साथ मैंने किस तरह का रिश्ता रखा है, उसके साथ मैं कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करता गया हूँ, उसके साथ मेरा कर्म का व्यवहार है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पर आप जरूर सोचें। क्योंकि अब हम बात हर बार करते हैं कि साइलेंस में जाकर कुछ देर विचार करने से बहुत सी बातें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। तो आज वक्त है कि हम अंदर जाके ये सोचें कि मैं और मेरा शरीर, बार बार हम इस श्रृंखला में जहां से शुरुआत हुई है बार बार कहते हैं कि मेरा शरीर कहने वाला वो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा, वो एनर्जी। तो मैं आत्मा, मैंने अपने शरीर के साथ क्या क्या कर्मों का रिश्ता जोड़ा है, और पिछले जन्मों का तो जो जोड़ा है वो तो मैं बर्थ के साथ लेकर आया, इस जन्म में अभी तक भी मैं क्या क्या जोड़ चुका हूं, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। आगे कुछ और भी बातें करेंगे, लेकिन आपके पास अगर कोई सवाल है आप ब्रह्मा कुमारी के देश विदेश में फैले सेंटर्स में जा सकते हैं और आपको जरूर उनका जवाब मिलेगा। नजदीक के सेंटर में जाने के लिए या तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क करें।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोग मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस ऑन awakening@pmtv.in or call us on 0999955960।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज आपका अपना कार्यक्रम है। हर बार हम आपसे कहते हैं, खुला निमंत्रण देते हैं, आप इस प्रोग्राम में लगातार शामिल रह सकते हैं। आने वाली घड़ियों में कर्म के इस पूरे एस्पेक्ट को थोड़ा और डिटेल मिलेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।